आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आयु कपिल और हम पढ़ रहे थे आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम था बच्चों सामाजिक न्याय और हमने पेज नंबर 80 तक हमने पढ़ा था। और मुझे आशा है आपने अपने आप पूरा चैप्टर रीड किया होगा तो आपको क्लियर हुई होंगी चीजें और गतिविधियां आपने की होंगी तो आपको और अच्छे से पता चला होगा अपने समाज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पूर्वाग्रह रूढ़िबद्धता एवं भेदभाव, पेज नंबर 81 पे है ये। तो पूर्वाग्रह रूढ़िबद्धता और भेदभाव इनका क्या अर्थ होता है ये हम जानेंगे बच्चों, ठीक है। पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा है जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों की जांच परख किए केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर ही आधारित होती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अपनी पूर्व कल्पित धारणा को बदलने से इनकार करते हैं। तो पूर्वाग्रह का अर्थ है पहले से ही एक अपनी सोच बना लेना, बिना किसी चीज को जाने, बिना उसको परखे, बिना किसी तथ्य को जाने, केवल सुनी सुनाई बात पर ही अपनी धारणा बना लेना। किसी से कुछ सुना और उसको मान लिया और अपने मन में बैठा लिया, ठीक है। हमने चेक नहीं किया कि क्या जो ये हमें कह रहा है वो सही है, ठीक है। अगर आपका सपोज कोई फ्रेंड है और आपके किसी और क्लास के बच्चे ने आपको कह दिया कि ये जो तुम्हारा फ्रेंड है ये तुम्हारे बारे में बहुत गलत गलत बातें बोल रहा था, तो आपने मन में अगर ये बात बैठा ली कि अच्छा ये बोल रहा होगा और आपने अपनी दोस्ती तोड़ दी अपने फ्रेंड से, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए था, आपको अपने दोस्त से पूछना चाहिए था कि क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें सच में बोली थी, पर आपने ये नहीं किया। आपने कोई जांच परख नहीं की, आपने सिर्फ सुनी सुनाई बात की धारणा मन में बैठा ली, तो ये पूर्वाग्रह है। तो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति होता है वो किसी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त होने पर भी अपनी धारणा को नहीं बदलता। अब जब आप अपने फ्रेंड से नहीं बोलेंगे और आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आप उसकी बात पे ध्यान नहीं देंगे और आप अपने मन में हमेशा बस ये बात रखेंगे कि इसने जरूर मेरे बारे में कुछ बोला होगा, तो आप अपनी धारणा को बदलने से इनकार कर रहे हैं। आपको नई जानकारी मिल रही है पर आप अपनी पूर्व कल्पित, पूरा पहले से कल्पना की गई धारणा को बदल नहीं रहे हैं। इस वजह से ये जो आपकी आदत है, ये जो धारणा है, ये क्या कहलाएगी, पूर्वाग्रह, ठीक है। दूसरा क्या शब्द है, रूढ़िबद्ध धारणा या रूढ़िबद्धता। तो रूढ़िबद्ध धारणा व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। रूढ़िबद्ध समाज में लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं जो कि अपरिवर्तनीय और कठोर होते हैं। जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में कुछ जातियों को जरायम पेशा जातियां घोषित कर दिया गया था, ऐसी पूरी जाति को अपराधियों का समूह मानकर उन पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई थी। लेकिन ऐसा सोचना कुछ व्यक्तियों के बारे में तो सच हो सकता है, परंतु उस पूरी जाति या समूह के लिए यह सच नहीं हो सकता। तो रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है इसको समझना ध्यान से, ठीक है। अब समझ लो कि आप हो, आपकी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो आपका पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। वहीं आपका एक दुश्मन है, ठीक है। आपकी क्लास में एक बच्चा है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आप सोचते हो अरे यार ये तो मेरा दुश्मन है, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। तो आप क्या कहोगे अपने पूरे ग्रुप को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी ये कह दोगे कि देखो मैं उससे बात नहीं करता हूं, तो तुम सब भी उससे बात नहीं करोगे, हमारा पूरा ग्रुप उससे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने अपने पूरे ग्रुप के अंदर, अपने हर एक फ्रेंड के अंदर ये बात स्थापित कर दी, पूरे समूह के अंदर ये बात बैठा दी उनके मन में कि हमें उनसे बात नहीं करनी है। तो जब पूरे समूह को ही एक समान श्रेणी में स्थापित कर दिया जाए और क्या कह दिया कि वो जो बच्चा है जिससे मैं बात नहीं करता उससे भी बात नहीं करनी, और उससे जो बच्चा बात करेगा उससे भी बात नहीं करनी, यानी जो उसका फ्रेंड होगा उससे भी बात नहीं करनी, तो दो ग्रुप्स बट गए, एक आपका पूरा ग्रुप, एक आपके दुश्मन बच्चे का पूरा ग्रुप, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं आपस में ये बात नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स ने ही कह दिया अपने अपने फ्रेंड से कि देखो सामने वाले ग्रुप से बात नहीं करनी है। हो सकता है कि सामने वाले ग्रुप में हर बच्चा गलत ना हो, हर बच्चे से आपकी दुश्मनी ना हो, पर फिर भी आपने पूरे ग्रुप का बहिष्कार कर दिया। तो जब आप पूरे समूह से ही दुश्मनी कर लेते हैं, जब आप पूरे समूह को एक ही श्रेणी में स्थापित कर देते हैं, और फिर अपने समूह को भी रूढ़िबद्ध कर देते हैं कि वो भी आपकी बात माने। तो जब आप पूरे अपने ग्रुप को भी रूढ़िबद्ध कर देते हैं, यानी ये कह देते हैं कि आपको भी सामने वाले से बात नहीं करनी है, तो जब हमारे मन में ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, हम पूरा का पूरा समूह ग्रस्त हो जाता है, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने कि ब्रिटिश शासन काल में कुछ जातियों को कह दिया गया था, घोषित कर दिया गया था कि ये सारी जातियां अपराधी हैं, तो इस जाति का कोई भी समूह दिखे, कोई भी व्यक्ति दिखे, आप उसे एक अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे, उन पर पाबंदियां लगा दी गई थी। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ कि उस पूरे समूह का ही बहिष्कार कर दिया गया, उस पूरे समूह को ही, उस जाति से संबंधित फिर जो भी व्यक्ति हो उसे एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था, एक समान श्रेणी में स्थापित कर दिया। तो अगर कोई जाति है और उसको आपने गलत जाति घोषित कर दिया और कह दिया कि ये अपराधी है, तो अगर उस जाति का कोई अच्छा व्यक्ति भी होगा तो भी उसके साथ व्यवहार गलत ही किया जाएगा, उस एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो होगा उसके साथ भी एक व्यक्तिगत व्यवहार नहीं होगा, उस पूरे समूह के साथ एक प्रकार का ही व्यवहार किया जाएगा। तो जब ऐसा होता है कि आप पूरे के पूरे समूह को एक ही श्रेणी में स्थापित कर देते हैं और फिर उसके साथ एक ही तरह का व्यवहार करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, अगला बताते हैं कि भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। भेदभाव को न्यायोचित ठहराने के लिए भेदभाव के पीछे के मूल कारण की बजाय उसे अन्य दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित बताने का व्यवहार भी देखा जाता है। तो भेदभाव, आई थिंक आपको जल्द बिल्कुल इजीली समझ आएगा, भेदभाव का अर्थ है कि किसी एक को कोई चीज देना और दूसरे को ना देना, या किसी एक के साथ एक अच्छा व्यवहार करना दूसरे के साथ ना करना, किसी एक इंसान को किसी एक चीज से वंचित रखना बल्कि दूसरे को वो चीज देना, यही भेदभाव है। अगर आप घर में दो भाई बहन है और एक को हम टॉफी दे दें और दूसरे को ना दें तो ये भेदभाव है। एक को हम नई ड्रेस दिलवा दे दूसरे को ना दिलवाएं तो ये हम भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है, एक समूह को तो अवसर दिए जाते हैं और दूसरे समूह को अयोग्य करार दिया जाता है कि ये इस काबिल ही नहीं है। दूसरों के लिए अवसर खुले होते हैं और एक समूह के लिए अवसर खुले होते हैं और एक समूह को कह दिया जाता है कि तुम अयोग्य हो, तुम्हें अवसर नहीं दिए जाएंगे। और इसके, इस भेदभाव के पीछे कोई भी रीज़न नहीं दिया जाता है, कोई भी वजह नहीं बताई जाती है, कोई मूल कारण नहीं बताया जाता है, बस अन्य कारण से ये कह दिया जाता है कि भेदभाव को न्यायोचित ठहराने के लिए भेदभाव के पीछे के मूल कारण की बजाय अन्य दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित बताने का व्यवहार भी देखा जाता है। यानी किसी भी वजह से वो बता देंगे कि हम आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, कोई मूल कारण इसके पीछे हो, कोई न्यायपरक कारण इसके पीछे हो, यानी जस्टिस का कारण इसके पीछे कभी नहीं होता, क्योंकि जो भेदभाव होता है वो न्याय पे बेस्ड ही नहीं होता है, न्याय होता ही नहीं है भेदभाव में। ठीक है, गतिविधि क्या है, क्या आपने कभी अपने सामाजिक परिवेश में पूर्वाग्रह व्यवहार देखे हैं, यदि हाँ तो उनकी सूची बनाइए। पूर्वाग्रह हमने समझे थे है ना, कि पहले से ही हम अपनी थिंकिंग एक बैठा लेते हैं और किसी भी नई जानकारी मिलने पर भी हम अपनी धारणा को नहीं बदलेंगे, तो ये पूर्वाग्रह है। तो अपने आसपास आप देख सकते हैं कि क्या किसी ने किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह बिठाए हुए हैं अपने मन में, और अगर हाँ तो आप उनकी सूची बना सकते हैं। जैसे कभी कभी पूर्वाग्रह ये हो जाता है हमारे मन में कि हम किसी एक तरह की जाति को या किसी एक प्रकार के धर्म को मान लेते हैं कि ये लोग गलत हैं, और फिर हमारे मन में वो चीज़ बैठ जाती है, तो हमें भले ही कितना भी उनके बारे में अच्छा बताया जाए, कितनी भी अच्छी जानकारियां हमें मिलें, पर फिर भी हम अपनी धारणा नहीं अगर बदल रहे हैं तो वो हमारे अंदर का पूर्वाग्रह है, और पूर्वाग्रह बहुत ही गलत चीज़ होती है, ये इंसान को विकास की ओर रोकने से, बढ़ने से रोकती है। ठीक है, अगला है सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्ग। अब ये बता रहे हैं कि असामाजिक असमानता जिन लोगों के साथ होती है वो कौन कौन है। ठीक है, असामाजिक असमानता हमने पढ़ा था जिसमें आपको समान रूप से समाज में अवसर नहीं मिलते, एक अच्छा स्टेटस नहीं मिलता, आपके साथ गलत व्यवहार होता है, आपका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है वह है असमानता के विभिन्न स्वरूप और उसकी बहिष्कार उत्पन्न करने की क्षमता। भारत जैसे देश में रूढ़िबद्ध विचार और औपनिवेशिक काल में और अधिक बलवती हुए। विश्व के अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा उसके बहिष्कार के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। तो हमारे जो भारतीय समाज है उसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि असमानता बहुत अलग अलग प्रकार से हुई है लोगों के साथ, और इस तरह से उस असमानता ने बहिष्कार किया है लोगों का। यानी कि असमानता हमने आर्थिक तौर पे की कि ये गरीब है ये अमीर है, सामाजिक तौर पे की कि इसकी जाति ऐसी है, इसको ये गरीब है, ये निचले वर्ग का है, ये ऊपरी वर्ग के हैं, है ना। और इन वजह से हमारे समाज में बहिष्कार किया गया लोगों का। हमारा देश जिसमें रूढ़िबद्ध विचार थे लोगों के, ऐसे में ये जो रूढ़िबद्ध विचार हैं ये और ज़्यादा सबल हुए और ज़्यादा बलवान हुए औपनिवेशिक काल में। हमारे देश में सामाजिक भेदभाव इतना ज़्यादा है और उसके इतने सारे रूप हैं कि कई प्रकार के वर्ग, कई प्रकार के तबके, कई प्रकार की जातियां इस सामाजिक असमानता से ग्रस्त हुए हैं। तो इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। भारत पहला है कि भारत में जो जाति प्रथा का जो स्वरूप प्रचलित है वह कुछ वर्गों के लिए अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी है। अस्पृश्यता इसका अतिवादी रूप है। जाति व्यवस्था व्यक्तियों को उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति, स्टेटस के आधार पर वर्गीकरण करती है। हालांकि 19वीं शताब्दी से जाति प्रथा तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए हैं। अब व्यक्ति के लिए व्यवसाय परिवर्तन करना आसान हो गया है क्योंकि अब परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपनाने के अवसर भी उपलब्ध हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बताते हैं कि असामाजिक जो सामाजिक असमानता है वो इस वजह से सबसे पहले फैली क्योंकि भारत में इतनी सारी जातियां बंटी थी और उन जातियों में जिन्हें निचली जाति बताया गया था उनके साथ बहुत गलत, अपमानजनक और बहिष्कारी और शोषणकारी व्यवहार किया जाता था। छुआछूत था, अस्पर्शता यानी छुआछूत था, इसकी इतनी गलत जो धारणा है ये हमारे समाज में फैली हुई थी और हम उन जातियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। हालांकि और इस वजह से उनका जो स्टेटस था वो निचला था, उनको व्यवसाय करने नहीं दिया जाता था, उन्हें ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाता था। हालांकि हमने देखा कि 19वीं शताब्दी से ये चीज़ें काफ़ी ढीली हुई और जो व्यवसाय है और जो जाति प्रथा है इनको अलग किया जाने लगा। पहले कहा जाता था कि अगर तुम निचली जाति के हो तो तुम सारे निचले ही बेकार गंदे काम करोगे, जो काम ऊपरी जाति के लोग नहीं करते, ऊँची जाति के लोग नहीं करते, जो उन्हें बेकार लगते हैं वो काम निचली जाति के लोगों से कराए जाते थे। परंतु अब जबकि व्यवसाय अलग अलग प्रकार के हुए हैं, नौकरी अलग अलग प्रकार की हुई हैं, समाज थोड़ा बदला है, तो अब ये परंपरागत जो व्यवसाय थे इन्हें करने पर कोई भी बंधन नहीं है। कोई किसी भी जाति का इंसान हो वो किसी भी जाति का काम कर सकता है। अब व्यवसाय को जाति से नहीं जोड़ा जाता। दूसरा क्या है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अवसर की असमानता का शिकार रही हैं। महिलाओं के बारे में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें अच्छा खाने नहीं दिया जाता था, घर के आदमियों को, पुरुषों को, लड़कों को बाकी वो सब चीज़ें अच्छी अच्छी दी जाती थी। पुरुष प्रधान समाज था तो महिलाओं को अवसर कम मिलते थे और वो हमेशा असमानता का शिकार रही हैं। तीसरा है मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित विशेष योग्य जन या अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को भी समाज में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि समाज कुछ इस रीति से बना है कि वह उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। हमारे समाज में जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त या दृष्टि बाधित या विशेष योग्य जन हैं उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके से बना है कि वहाँ उन्हें फील होता है कि हम अलग हैं, हम जो हैं इस मुख्य धारा में शामिल नहीं होते, क्योंकि हमारा समाज उन्हें वो फील कराता है, हमारा समाज उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता और वे बेचारे हमेशा अपने जीवन को एक संघर्ष की तरह देखते हैं। ये गलत है बच्चों। चौथा क्या है, भारत सहित पूरे विश्व में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें भी यदाकदा मिलती हैं। यानी भारत क्या, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन सब में हम देखते हैं कि धार्मिक रीति से या फिर भाषा के वजह से बहुत सारे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। वो अलग अगर भाषा बोलते हैं, जैसे अगर कोई इस्लामी देश है और वहाँ पे अगर कोई हिंदू व्यक्ति रहता है तो उसके साथ भेदभाव होता है और उन्हें जो जितने भी वहाँ के अल्पसंख्यक होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सभी तबकों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी समाज में हाशिए पर होते हैं। हर तबके के जो आर्थिक रूप से असक्षम लोग हों, जो गरीब लोग हों, उनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया जाता है और वे पिछड़े वर्ग के हो जाते हैं। इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग आदि पर आधारित भेदभावों के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, किंतु इसके बावजूद समाज में कुछ वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह बने रहते हैं, साथ ही अनेक नए पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि तो जो हमारा इतिहास है उसमें जब स्टार्टिंग से जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव होते हैं, उनके विरुद्ध आंदोलन हुए काफी। आज बहुत स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु आज भी कई लोगों के मन में वो पूर्वाग्रह बने हुए हैं। आज भी वो बदलना नहीं चाहते, आज भी वो कुछ जातियों को निचला ही समझेंगे, आज भी वो उनके साथ भेदभाव करेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि नए पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो रहे हैं। वो पुराने पूर्वाग्रह तो मन में है ही, नए पूर्वाग्रह हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। हम अपनी धारणा को और संकीर्ण करते जा रहे हैं, हम लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते जा रहे हैं, और ये सब चीजें गलत हैं। ये सब चीजें और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। गतिविधि क्या लिखी है आपके लिए कि अपने परिवेश में असमानता व हाशियाकरण के शिकार समूहों की पहचान करके उनकी सूची बनाइए। आपके परिवेश में, आपके आसपास जो भी असमानता के शिकार हो या हाशियाकरण के शिकार हो, उन समूहों की पहचान करके आप उनकी सूची बना सकते हैं और उनके बारे में और जान सकते हैं कि उनके साथ कितना गलत किया जाता है सिर्फ पूर्वाग्रह की वजह से। सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास। अब इतनी सारी जो असमानता हमने देखी हमारे समाज में फैली है, इसको सुधारने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए हैं, सामाजिक न्याय जो इस चैप्टर का नाम है उसको लाने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं वो हम जानेंगे। समाज में जो सुविधाएं और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी दें, यही सामाजिक न्याय है। ऐसा होने पर समता मूलक समाज बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर मिल पाएगा, तभी समूचे समाज की प्रगति हो पाएगी। सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। भारत सरकार ने देश में वंचित व पिछड़े समुदायों की पहचान कर तीन तरह की सूचियां बना रखी हैं। पहली सूची अनुसूचित जाति की है, जिसमें समाज के वंचित वर्ग की अति निम्न समझी जाती रही जातियां सम्मिलित हैं। दूसरी सूची अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें आदिवासी जातियां सम्मिलित हैं। तीसरी सूची की है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी वे जातियां सम्मिलित हैं जो कि प्रथम व द्वितीय सूचियों में सम्मिलित नहीं है। इन वर्गों को विशेष बर्ताव का पात्र माना गया है। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में इनके लिए कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। तो हमारे समाज में सामाजिक न्याय लाने के लिए जो प्रयास हुए हैं वो क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जो सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय ये धारणा है कि जो सुविधाएं और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा मिले तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप दूसरे किसी बच्चे को भी शिक्षा से वंचित ना रखें। आपके घर में कोई बच्चा काम ना करे, ये भी आपका जिम्मेदारी है। ये ना हो कि आप जाके स्कूल जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहीं एक आपकी उम्र का ही बच्चा आपके घर में आपके लिए काम कर रहा है, उसको भी वही हक मिले, उसको भी वही अवसर मिले कि उसे भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले। अगर आप ये करते हैं, यानी आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं, यही सामाजिक न्याय है कि जो हम खुद के लिए सुविधाएं और संसाधन और अवसर चाहते हैं वही हम दूसरों को भी दें। ठीक है, तो सरकार ने क्या क्या किया है इसके लिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे वंचित और पिछड़े वर्ग थे जिनके साथ अन्याय किया जाता था, जिनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा शोषित किया जाता था, उनके पास अवसर नहीं थे इन सभी स्तरों पर। तो हमारी सरकार ने कुछ सूचियाँ बनाई हैं जिसकी वजह से हम उन्हें न्याय दिला पा रहे हैं। पहली सूची है अनुसूचित जाति की, तो इसमें जितने भी वंचित वर्ग की जातियां हैं जिन्हें निम्न समझा जाता है उनके नाम सम्मिलित हैं। दूसरी जो सूची है वो है अनुसूचित जनजाति की, जिसमें सारी जनजातियां सम्मिलित हैं। तीसरी सूची है अन्य पिछड़ा वर्ग की, जिसमें वो सारे वर्ग आ जाते हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। फिर इन सारी सूचियों में जितने भी वर्ग, समूह या जातियां हैं उन सबको ही अवसर दिए जाते हैं, उन सबके लिए सीटें निर्धारित या आरक्षित कर दी जाती हैं हर शैक्षिक संस्थान में, हर जगह, ताकि उन्हें हर तरह के अवसर दे दिए जाएं और वे अपनी योग्यता का श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सकें और अपने हालातों को बदल सके। पहला है केंद्रीय व राज्यों के विधानमंडलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी कुछ स्थानीय सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। साथ ही इनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में भी अन्य आरक्षित में भी स्थान आरक्षित कर दिया गया है। इसी सिद्धांत को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी लागू किया गया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम तो विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए लागू किए गए हैं, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। तो वे बता रहे हैं कि विधानमंडलों में, राज्य के विधानमंडलों में, केंद्रों के विधानमंडलों में और जो स्थानीय निकाय हैं उन सभी में इन सारे वर्गों के लिए, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए सीटें निर्धारित कर दी गई हैं, सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, इन सब में ही इनके लिए सीटें निर्धारित कर दी गई हैं, ताकि इनकी सीटें कोई ले ना पाए और इनकी वहाँ पे जो उपस्थिति है वो हमेशा दर्ज रहे, तो फिर इन्हें अवसर मिल पाए और ये आगे बढ़ पाए। कुछ कार्यक्रम सिर्फ इन्हीं के बढ़ावे के लिए, इन्हीं के विकास के लिए विशेष रूप से आयोजित किए गए हैं और कुछ कार्यक्रम जो बाकी के हैं उनमें विशेष रूप से इन्हें प्राथमिकता दे दी गई है। दूसरी बात क्या लिखी है कि समाज में जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता को समाप्त करने और इन्हें रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सन 1989 में संशोधन कर इन वर्गों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंडात्मक प्रावधानों और अधिक मजबूत किया गया है। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी जातीय भेदभाव होते थे, छुआछूत आदि की गलत चीज़ें हमारे समाज में थी, उन्हें रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सन 1989 में ये बना। और इसके तहत क्या हुआ कि जितनी भी हिंसा होती थी, अपमानजनक काम होते थे, उन सबको दंडात्मक घोषित कर दिया गया। यानी कोई भी इन सारे समूहों, इन सारे वर्गों के प्रति हिंसा नहीं करेगा, अपमानजनक काम नहीं करेगा। और इस वजह से इन लोगों को अधिक मजबूती मिली, इन वर्गों को, इन जातियों को, समूहों को न्याय मिला और मजबूती मिली। तीसरा क्या है कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए भी कानून बनाकर कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से जीविका प्रदान करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देता है। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उसके लिए क्या प्रयास किए गए कि उनके खिलाफ जो घरेलू हिंसा या छेड़छाड़ की जो सारी हरकतें सामने आती थी उसके लिए कानून बना दिए गए कि अब कोई भी व्यक्ति महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा करेगा या छेड़खानी करेगा या उन्हें किसी भी प्रकार से शोषित करेगा तो दंडात्मक प्रावधान है, उन्हें दंड दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और महिला और पुरुष को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिले, उनकी नौकरियों में, जीविका में उन्हें समान रूप से अवसर मिले और उन्हें वेतन समान रूप से मिले, इसके लिए हमारे सरकार ने, संविधान ने निर्देश दिए हैं। चौथा क्या है कि बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित कर प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया है। बच्चों को उनका बचपन ना छीना जाए, उनसे उन्हें शिक्षा का हक मिले, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो, उनका शोषण ना हो, इसके लिए जो बाल श्रम है, बच्चों के द्वारा बाल मजदूरी जो कराई जाती है, बच्चों से जो काम कराया जाता है, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। जो भी इंसान बाल मजदूरी कराएगा उसको दंड मिलेगा और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क घोषित कर दिया गया है। यानी प्रारंभिक शिक्षा हर किसी का अधिकार है, वो निःशुल्क दी जाएगी, बिना फीस के दी जाएगी, उन्हें कोई पैसा नहीं देना है शिक्षा लेने के लिए, और अनिवार्य है। यानी जिस भी बच्चे को अगर आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आप एक कानूनन अपराध कर रहे हैं और आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। पांचवा क्या है, विशेष योग्य जनों के लिए भी नौकरियों में स्थान आरक्षित किए गए हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो विशेष योग्य जन हैं उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, उनकी सीटें रिजर्व हैं शैक्षिक संस्थानों में भी और सरकारी नौकरियों में भी, ताकि उनका भला हो, उन्हें अवसर मिले और उनका विकास हो सके। उनके कल्याण के लिए अन्य विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। छठा है कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा व लिपि को बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए वे अपने शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं। जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, उन्हें किसी प्रकार का शोषण ना झेलना पड़े, इसके लिए संवैधानिक तौर पर उन्हें यह अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा लिपि आदि को बचाने के लिए प्रयास करें, अपने खुद के, अपनी संस्कृति के, अपने धर्म के, अपनी भाषा से संबंधित शैक्षिक संस्थान वो खोल सकते हैं। कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। इसके लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता युक्त सतत सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। इन लाइनों से ये हमें समझा रहे हैं कि अगर कानून में कोई चीज बता दी गई, कोई नियम बना दिया गया, वो तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक बच्चों, समाज का हर एक व्यक्ति उसमें भागीदारी ना करे। जब तक हम संवेदनशील होकर, ध्यान से, विवेकशील होकर, जागरूक होकर ये ना सोचे कि हमें सबके साथ न्याय करना है, हमें सबको अवसर देने हैं, जो हम खुद के लिए चाहते हैं वो हमें दूसरों को भी देना है, तभी हम समाज में एक सामाजिक न्याय स्थापित कर पाएंगे। अब हम शब्दावली देखते हैं बच्चों। पहला शब्द है औपनिवेशिक काल। तो औपनिवेशिक काल क्या है, ये वह समय है जब भारत को दूसरे देश से आए हुए लोगों यानी ब्रिटिश ने अपने अधीन करके शासन किया। तो जब ब्रिटिशों ने हम पे शासन किया, वो जो काल है, वो जो समय है, उसे औपनिवेशिक काल कहा जाता है। दूसरा शब्द है अस्पर्श्यता, इसका अर्थ है छुआछूत, मैंने ऊपर बताया था। तीसरा वर्ड है अल्पसंख्यक, तो जनसंख्या में धार्मिक व भाषाई रूप से छोटा समूह। जब कोई समूह किसी जगह, किसी देश में, समाज में, जब कोई समूह, कुछ लोगों का समूह छोटा होता है, यानी उनकी जनसंख्या कम होती है, यानी कि अगर कोई, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, कोई इस्लामी देश है और वहां पे जो हिंदू लोग हैं, तो उनका समूह छोटा होगा, तो वो अल्पसंख्यक कहलाए जाएंगे। ठीक है, चौथा है हाशिया। तो मुख्य धारा से अलग थलग समाज का वह भाग जो सत्ता और संसाधनों की पहुंच से दूर है, यानी मुख्य धारा का वो अलग थलग भाग, वो अलग थलग वर्ग या समूह जिसके पास संसाधन नहीं है और जो सत्ता और संसाधनों की पहुंच से दूर है, जिसका शोषण हो रहा है या जो गरीबी में है, वो हाशिया पे है, उसे हाशिया करार दिया जाता है। अभ्यास प्रश्न है, पहला है सही विकल्प को चुनिए। तो पहला है समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। ये हमने पढ़ा है कि समाज में जो आर्थिक असमानता है उसका मुख्य कारण क्या है। पहला है परिश्रम का अंतर, दूसरा है योग्यता का अंतर, तीसरा है अवसरों की असमानता, या चौथा प्रयासों का अंतर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अवसरों की असमानता। दूसरा है अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है। पहला है पूर्वाग्रह, दूसरा है रूढ़िबद्धता, तीसरा है भेदभाव, या चौथा उपर्युक्त सभी। तो अवसरों की असमानता का अर्थ मतलब हुआ कि हम सबको समान रूप से अवसर नहीं दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, किसी को कम अवसर मिल रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? इसके पीछे के कारण तीनों ही होंगे। पूर्वाग्रह, जब आप किसी अपने मन में बैठा लेंगे किसी के प्रति कोई भावना, तो आप उसको अवसर नहीं देंगे। रूढ़िबद्धता, जब पूरा का पूरा आपका समूह एक पूरे समूह के प्रति एक ही श्रेणी में उसको बांध कर बैठा लेगा। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक जाति को आपराधिक घोषित कर दिया, मान लिया कि ये तो सारा जो जाति है इसका हर एक व्यक्ति ही गलत है, तो उस व्यक्ति के अच्छे व्यक्ति को भी हम फिर अवसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने पूरे ही पूरे जाति या समूह को गलत मान लिया है। भेदभाव, जब भेदभाव होगा तब भी हम अवसर नहीं देंगे, एक को अवसर देंगे पर दूसरे को नहीं देंगे। तो तीनों ही कारण है, उपर्युक्त सभी ऑप्शन आएगा जिसकी वजह से अवसरों की असमानता देखी जाती है। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है व्यक्ति की, समाज की, सरकार की या उपर्युक्त सभी की। तो चौथा ऑप्शन है, व्यक्तिगत तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और सरकारी नीतियों द्वारा भी, तीनों ही तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है, यह हम सबकी ही जिम्मेदारी है। दूसरा प्रश्न है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। स्तंभ अ में लिखा है पहला, वंचित वर्ग की जातियां। तो वंचित वर्ग की जातियों से आप इधर देखेंगे स्तंभ ब में क्या जोड़ा जाएगा। तो जो लास्ट ऑप्शन है अनुसूचित जाति, ये है वंचित वर्ग की जातियां। दूसरा है आदिवासी जातियां, आदिवासी जातियां होंगी अनुसूचित जनजाति। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी अन्य जातियां, ये कौन होंगे? पहला ऑप्शन अन्य पिछड़ा वर्ग। चौथा है जनसंख्या में धार्मिक व भाषाई रूप से छोटा समूह, ये होंगे अल्पसंख्यक। और ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? ये सब हमने पढ़ा था पेज नंबर 82 पर, 82 पर, जो सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब लिखा है कि इन सारे ही वर्गों या जातियों को क्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश जाति प्रथा का अतिवादी रूप है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 पर, और इसमें क्या आएगा? अस्पर्श्यता, अस्पर्श्यता जाति प्रथा का अतिवादी रूप है। दूसरा है, अपरिवर्तनीय कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं को डैश कहते हैं। जब कोई भी धारणा अपरिवर्तनीय हो, कठोर हो, यानी हम उसे बदलना ना चाहते हो, रूढ़िबद्ध हो, अपरिवर्तनीय हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहा जाता है पूर्वाग्रह। तो अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं उन्हें पूर्वाग्रह कहा जाता है, क्योंकि पूर्वाग्रह क्या होता है? जिसे हम बदल नहीं सकते, हम बदलना नहीं चाहते, हमें नई जानकारी मिलेगी तो भी हम कठोर रहेंगे और जो हमने चीजें मान ली हैं रूढ़िबद्ध तरीके से वो धारणाएं हमारे मन में हमेशा रहेंगी, अपरिवर्तनीय होती हैं और वही पूर्वाग्रह कहलाती हैं। तीसरा है, विश्व के 80% गरीब लोग केवल 20% संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं, ये हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, क्योंकि 80% गरीब लोगों के पास केवल 20% संसाधन है और 20% अमीर लोगों के पास 80% संसाधन है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, समाज में आर्थिक असमानता के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आर्थिक असमानता किन कारणों की वजह से हमारे समाज में है ये हमें बताना है। पेज नंबर 79 का जो लास्ट पैराग्राफ है आर्थिक असमानता का, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। इसके पीछे के कारण ये हैं जो कि उन्होंने उसमें बताए हैं, वो कारण नहीं है इसके पीछे के। इसके पीछे के कारण होंगे कि अवसरों की असमानता है, अवसर समान तरीके से लोगों में नहीं बटे हैं, लोग अपने मन में धारणाएं बनाकर बैठे हैं, सारी धारणाएं आ जाएंगी कि भेदभाव किया जाता है, रूढ़िवादिता है, रूढ़िबद्धता है और पूर्वाग्रह है, ये मान लिया जाता है कि ये उनकी नियति है, गरीब लोग की नियति है कि वो गरीब ही रहेंगे, ये मान लिया जाता है कि वो लोग मेहनत या परिश्रम नहीं करना चाहते, वो अपनी हालात बदलना नहीं चाहते, और ये मान लिया जाता है कि वो लोग जो हैं, और ये मान लिया जाता है कि वो गरीब ही रहेंगे। तो ये जो अवसरों की असमानता है इस वजह से ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में आर्थिक असमानता है, और जो संसाधन संपन्न लोग हैं वो अवसर अपने पास ही रखते हैं, अच्छे से नहीं बांटते गरीब लोगों में, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, ठीक है। अगला है, सामाजिक बहिष्कार क्या है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो सामाजिक बहिष्कार के बारे में हमने पढ़ा था पेज नंबर 80 पर लास्ट पैराग्राफ कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है और इसके क्या प्रभाव हैं। तो सामाजिक बहिष्कार होता है कि जब किसी एक जाति या समूह को, एक वर्ग को अपनी मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में मिलने से रोका जाता है, जब उन्हें अवसर नहीं दिए जाते, उन्हें धकेल दिया जाता है हाशिए पर, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, और इस वजह से जो उनकी प्रतिभा है वो समाज में हम नहीं देख पाते, हमारा जो समाज है वो उनकी प्रतिभा से वंचित रह जाता है, उनको आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते, और फिर वो भी इसको अपनी नियति समझ लेते हैं और मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास बंद कर देते हैं। ये सारे जो हैं चीज़ें हो जाती हैं, सारे प्रभाव पड़ते हैं जब हम किसी भी समूह का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्गों की जानकारी दीजिए। तो हमारे भारतीय समाज में जितने भी असमानता से ग्रस्त जो वर्ग हैं उनके बारे में हमने पूरा पढ़ा है पेज नंबर 81 के लास्ट पैराग्राफ में। बच्चों, सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्ग, पहले में जाति से संबंधित लोग, फिर दूसरे में महिलाएं, तीसरे में मानसिक रूप या शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त लोग हैं, चौथे में हमने देखा जो अल्पसंख्यक हैं, और पाँचवें में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। यही सारे लोग हैं, यही सारे वर्ग या समूह हैं जो कि सामाजिक असमानता से ग्रस्त हैं। इसके बारे में आप पूरी जानकारी दे देंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। सातवां है कि सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सरकार द्वारा किए गए कार्यों का या प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है पेज नंबर 82 पर, जो सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास हैं। 6 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये 6 के 6 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए वही सब आ जाएंगे जो सरकार ने प्रयास किए हैं सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु। मुझे लगता है ये चैप्टर समझ आना चाहिए, और पूरा जब आप इसको एक बार और रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाएंगी, और फिर आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर खुद से दे पाएंगे। तो अच्छे से पूरा ध्यान से रीड कीजिए, ठीक है। अगले चैप्टर की में मिलेंगे हम, तब तक आप ये पूरा अच्छे से समझिए, और अपनी सारी गतिविधियों को जब आप करते हैं जो लिखी हैं इस पूरे चैप्टर में, तब आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी अपने समाज के बारे में। तो मुझे आशा है कि आप वो सब करेंगे। बाय बच्चों।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।